बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यह अशफ़ा ऑडियो लाइब्रेरी की आवाज़ है। मुलाहिज़ा कीजिए अशफाक अहमद ख़ान की तहरीर सिलसिला दौरे नबूवत के बच्चे से जन्नत का मतलाशी, जो 32 सफ़हात पर मुश्तमिल है। पेशे लफ्ज़। आदमी जिस उम्र में शऊर की सीढ़ी पर पहला कदम रखता है, वह बहुत नाजुक और हसास है। जैसा माहौल हो, जैसी तस्वीर उसकी आंखों को नज़र आए, जिस तरह के ख्यालात और नज़रियात उसके दिमाग की सतह को छूते हों, वैसा ही उसका मिजाज बनता जाता है। उसकी सीरत में माशरती रवैयों की अक्कासी झलकने लगती है। उसके किरदार में वो सारे नज़रियात दर आते हैं जो उस वक्त अपने जोबन पर हों, और वो वैसी ही तरबियत पाकर दीगर इंसानों के हुजूम में जा मिलता है। किस्मत यावरी करे तो नज़ाकत से भरपूर ये दौर मजहब गो सफदां यानी भेड़ चाल का शिकार होने के बजाय अपनी अलग राह मुतय्यन कर लेता है। उनका हाल भी कुछ ऐसा ही था। उनके आबाओ अजदाद तारीक राहों के मुसाफिर थे, लेकिन उन्होंने उस राह पर कदम रखना पसंद किया जिसकी धूल भी सितारों की चमक पोशीदा है। वो एक मोअज़्ज़ज़ ख़ानदान के चश्मो चराग थे, जिनको विरासत में अक्लमंदी, बहादुरी, फसाहत व बलागत जैसी अनमोल सिफात मिली। करतास व कलम से उनका रिश्ता उस वक्त तक कायम हुआ जब उनके इर्द गिर्द के माहौल में गिनती के चंद अफराद ही ये हुनर जानते थे। इनकी प्यास ने उन्हें सरयानी जबान सीखने की तरफ माइल किया। अपनी मेहनत, शौक़ और लगन से उन्होंने उस जबान में भी महारत हासिल कर ली। यूं उन्हें दो जबानों का इल्म होने का एहसास हासिल हुआ। कुरान के साथ साथ उन्हें तौरात पढ़ने का मौका भी मिला। इसी बिना पर उन्हें कारियुल कातिबीन यानी दो किताबों को पढ़ने वाला कहा गया। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त से अहादीस लिखने का सिलसिला शुरू किया। इसी बिना पर इन्हें दूसरे सहाबा से ज़्यादा अहादीस याद थीं। इनके मजमूए अहादीस को सहीफ़ा सादका के नाम से पुकारा गया। इन्हें कुरान से खसूसी लगाव और मोहब्बत थी। वो कुरान की तिलावत को आंखों की ठंडक समझते थे। उनकी पूरी ज़िंदगी इबादत और तिलावत में गुजरी। दुनिया इन्हें अपनी चमक दमक के बिना पर कभी धोखा ना दे पाई, और ना ही उनकी जेब व जीनत उनके मन को भाई। तमाम उम्र उन्होंने अल्लाह की रज़ा का ख्याल रखा। अपनी ज़बान की उन्होंने हमेशा हिफाजत की। किताबों की सूरत में उन्होंने हमारे लिए बहुत इल्म छोड़ा, ऐसा इल्म जो इनके लिए सदक़ा जारिया है। जब भी कोई पढ़ने वाला उस इल्म को पढ़ेगा तो इन्हें उसका सवाब मिलेगा। ये कुरान से मोहब्बत रखने वाले, जन्नत के तलाश व जस्तजू में रहने वाले अपने दौर के अजीम सहाबी थे। आपके ज़ौक़ मुताले की नज़र उनकी दास्तान ज़िंदगी। वसलाम, अब्दुल मालिक मुजाहिद। पथरीली ज़मीन सूरज की तपिश से सुर्ख हो रही थी। आसमान परिंदों के वजूद से खाली था। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। गर्मी ने सब लोगों को अपने घरों में दबक जाने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन हैरत की बात थी, एक बच्चा जिसकी उम्र चंद साल ही होगी, गर्मी से बेपरवाह एड़ियों के बल खड़ा एक खिड़की से अंदर झांक रहा था। अंदर का मंजर इसके लिए बहुत वहशतनाक था। इसके जहन में चिंगारियां सी उड़ रही थीं। वो सोच रहा था, ये माजरा क्या है? ये कयामत क्यों ढाई जा रही है? अचानक अंदर से एक दर्दनाक अजियत से भरपूर चीख उभरी। वो बच्चा घबरा कर पीछे हट गया। जिस घर की खिड़की से वो अंदर झांक रहा था, वो किसी और का नहीं, उसका अपना घर था। उसका नाम अब्दुल्ला था। घर के अंदर इसने जो कयामत खेज मंजर देखा था, वो उसके लिए बहुत ही अजीब था। उसका बाप उम्रो अपने एक गुलाम को बदतरीन तशद्दुद का निशाना बना रहा था। अचानक अंदर से इसके बाप की गजब आलूद आवाज़ उभरी। अब्दुल्ला फिर खिड़की की तरफ मुतवज्जा हो गया। उसका बाप कह रहा था, तुम मेरे गुलाम हो, तुम्हारा जिस्म मेरा है, तुम्हारी एक एक सांस मेरी मिल्कियत है, तुम्हारी नीयत, तुम्हारे इरादे सब मेरे हुक्म के ताबे होने चाहिए। मेरे आका, मैं अब भी आपका गुलाम हूँ, दिलो जान से आपका गुलाम हूँ, आपकी हर खिदमत बजा लाने के लिए तैयार हूँ। अब्दुल्ला ने हैरत से इस गुलाम के लहूलुहान चेहरे और कटे पिटे बदन को देखा। जुल्म का हर वार सहकर भी वो अताद की इंतहा किए जा रहा था। लेकिन गुलाम की अगली बात इससे भी ज़्यादा हैरत अंगेज थी। वो कह रहा था, लेकिन मेरे आका, ईमान मेरा ज़ाती मामला है। अब्दुल्ला के बाप उमरों ने कोड़े का एक ज़बरदस्त वार उसके बरहाना सीने पर किया तो गुलाम तकलीफ से तड़प उठा। तुम्हारी यही हठधर्मी मेरे गज़ब की आग को भड़का रही है। तुम मेरे गुलाम हो, तुम्हारा दीन भी वही होना चाहिए जो मेरा है। नहीं मेरे आका, दीन जिस्मों का नहीं रूहों का सौदा होता है। मेरे जिस्म का एक एक ज़र्रा आपकी ग़ुलामी का तौक पहने हुए है, लेकिन मेरी रूह दीन इब्राहिमी पर ईमान ला चुकी है। ग़ुलाम तुम बर्बाद हो जाओगे, उम्र तैश से पुकारा। नहीं मेरे आका, मेरी आखरत संवर जाएगी, ग़ुलाम ने ईमान के जज्बों से सरशार होकर कहा। जिसकी दुनिया बर्बाद हो जाए उसकी आखरत कहाँ बाकी रहती है, उमर ने उसे तंज का निशाना बनाते हुए कहा। उसके मुशरिकाना अकायद की तालीम यही कहती थी कि दुनिया बस यही है और सब कुछ यहीं ख़त्म होकर रह जाएगा। आका, यही तो फ़र्क है मेरे और आपके दीन में, ग़ुलाम ने ज़ख्मी चेहरे पर मुस्कुराहट सजा कर कहा। मेरे दीन में दुनिया की कीमत पर आखरत को बर्बाद नहीं किया जा सकता। तुम भयानक मौत मरोगे, उमर ने उसे धमकाया। मेरे आका, जब आपका हर तशद्दुद मुझे ईमान छोड़ने पर मजबूर नहीं कर सका तो मौत जैसा आसान रास्ता मुझे सिराते मुस्तकीम से कैसे हटा सकता है? गुलाम ने अपने जख्मों से चूर बदन को देखते हुए जवाब दिया। वो कमसिन बच्चा अब्दुल्ला हैरान रह गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसा जज्बा है, ये कौन सा दीन है जिसने उस गुलाम की रूह को सरशार कर रखा है। उसे अपने बदन के जख्मों की तो परवाह तक नहीं थी, लेकिन अपनी रूह की सच्चाई और ईमान पर जिद पड़ना, ज़रा सी खराश आना उसे मंजूर नहीं। जहन छोटा था, मामला बड़ा था। उसकी सोचें परेशान होकर रह गईं। कानों में गुलाम की चीखें गूंज रही थीं। उसका बाप उम्रो शायद अब गुलाम पर तशद्दुद के नए हरबे आजमा रहा था। अब्दुल्ला ने एक बार फिर उसकी खिड़की से अंदर झांका तो उसका जिस्म लरस कर रह गया। गुलाम का शिकस्ता जिस्म देखकर उसकी आंखें भर आईं। वो गमजदा होकर पीछे हट गया। वो धूप से तपती ज़मीन पर नंगे पांव चल रहा था। अंगार बनी ज़मीन उसके पांव में आबले डाल रही थी, लेकिन उसका जहन तो उस गुलाम की बातों में खोया हुआ था। क्या ऐसा भी हो सकता है, किसी चीज़ से इतनी ज़्यादा मोहब्बत भी हो सकती है कि इसके लिए हर खुशी, हर राहत और हर आसाइश तर्क कर दी जाए? उसका दिल कह रहा था कि गुलाम सच्चाई के रास्ते पर है। अब्दुल्ला की आंख ऐसे कई तमाशे देख चुकी थी। हर दफ़ा ही उस पर हैरत के कई नए दरवाजे खुलते। एक दफ़ा तो हद हो गई। उसके दादा आस ने अपने एक गुलाम को जंजीरों में जकड़ कर तपती ज़मीन पर डाल दिया। उसकी पुश्त आबलों से भर गई। वो उससे भी अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसका जवाब भी वही था, मोहम्मद का दीन नहीं छोड़ूंगा। हर सज़ा का जवाब वही यही देता था, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु। तब अब्दुल्ला के जहन के बंद दरवाजे खुलते चले गए। ये लोग सच्चाई पर हैं। इस नतीजे पर पहुँचते ही उसके मासूम दिल में तड़प पैदा हो गई। वो जानना चाहता था कि ये दीन क्या है, इस पर कैसे चला जा सकता है। वो भी अपने बाप दादा के गुलामों की तरह हक पर ईमान लाने का ऐलान करना चाहता था, लेकिन वो अभी बच्चा था, मजबूर और लाचार था। उसके पास ना कुव्वत थी और ना ताकत के सबके सामने डटकर अपने इस्लाम कबूल करने का ऐलान करता। चुनाचा खुद पर जबर करके आने वाले अच्छे वक्त का इंतज़ार करने लगा। वक्त का पहिया गर्दिश करता हुआ बिल आखिर अपने दामन में उम्मीद की एक किरण लेकर आया। उसके चचा हशाम ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। चचा के इस इकदाम ने उसके दिल में खुशी की लहर दौड़ा दी, क्योंकि अब्दुल्ला को उनसे बहुत मोहब्बत थी और वो भी उससे बहुत उल्फत का इजहार किया करते थे। वो मुसलमान हो गए थे। अब्दुल्ला के लिए इससे बड़ी खुशी कोई नहीं हो सकती थी। अब्दुल्ला 10 साल का था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होने का जज्बा दिल में लिए मक्के से मदीने की तरफ भाग निकला। रास्ते की मुश्किलात और दुश्वारियों का सामना करते बिलाखिर मदीने जा पहुंचा। दयारे हबीब पहुंचकर इसके दिल को सुकून मिल गया। बारगाह नबी में हाजिरी दी, फिर हमेशा के लिए वहीं का होकर रह गया। ये जलील उल कदर सहाबी अब्दुल्ला बिन उमर बिन आस रदी अल्लाह तआला अन्हुमा थे। आपका ताल्लुक़ कबीला बनु सहम से था। इसका शुमार मक्के के मौजिज़ तरीन ख़ानदानों में होता था। दौलत और सरवत में एक ख़ास मकाम रखते थे। मक्के की सरदारी भी इसी ख़ानदान के अफराद के पास थी। लोगों के मसाइल, झगड़ों और उलझनों में यही लोग फ़ैसला करते थे। इनके फ़ैसलों को हुर्फ़ आखर समझा जाता था और दिलो जान से उनका एहतराम किया जाता था। आपके दादा आस बिन वाइल का शुमार मक्के के मालदार ताजरों में होता था, लेकिन वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम का सख्त तरीन दुश्मन था। उसने मुसलमानों की तरह तरह की तकलीफ़ पहुँचाई। वो अपने कुफर पर फ़ख्र का इजहार किया करता था। आज की पूरी ज़िंदगी इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ साजिशों में गुजरी। वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत मदीना के बाद कुफर ही की हालत में मर गया। उस वक्त उसकी उम्र 50 बरस थी। आस बिन वाइल की बदतरीन दुश्मनी की वजह से इसके मुताल्लिक़ कुरान करीम में यह आयत करीमा नाजिल हुई, इन्ना शानिया का हुवल अबतर, बेशक आपका दुश्मन ही अबतर है। अबतर का मतलब है नस्ल का ख़त्म हो जाना, जिसकी नस्ल ख़त्म हो जाए, जो भलाई से महरूम हो जाए। इस आयत के नाजिल होने की वजह ये थी कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों बेटे कासिम और अब्दुल्ला फ़ौत हो गए और सिर्फ बेटियां ही बाकी रह गईं, तो आस ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तंज करते हुए कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल आज के बाद ख़त्म हो गई। जब ये फ़ौत हो जाएंगे तो पीछे इनको याद करने वाला कोई नहीं रहेगा। कुरान करीम का कहा सच साबित हुआ। आज भलाई से महरूम रहा, कुफर की हालत ही में मरा। आज इसको याद करने वाला भी कोई नहीं। अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हु के वालिद का नाम उमर था। वो कुरैश के दाना लोगों में से एक थे। उनकी दानाई और अक्ल व फहम की मिसाल दी जाती थी। इब्तिदा में वो भी अपने बाप आस की तरह मुसलमानों के सख्त मुखालिफ थे, लेकिन फिर अल्लाह ताला ने उनको हिदायत की तौफीक बख्शी। 8 हिजरी में खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह तआला अन्हो और उस्मान बिन तलहा रदी अल्लाह तआला अन्हो के हमरा मदीने मुनव्वरा की तरफ हिजरत की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी आमद और उनके इस्लाम कबूल करने की वजह से बहुत ज़्यादा खुश हुए। इन दिनों जंग ज़ातुस सलासिल सर पर थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे फ़रमाया, मैं तुमको लश्कर का अमीर मुकर्रर करता हूँ। यूं जाते ही इनको जिहाद जैसी अजीम फरीजे के लिए तैयार किया गया। अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह तआला अन्हुमा की वालदा भी अब इब्तिदा में इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ थीं। जंगे अहद में वो कुफार को मुसलमानों के ख़िलाफ़ लड़ने पर उभारती थीं, लेकिन फ़तेह मक्का के मौके पर इनको हिदायत की रोशनी नसीब हो गई, वो भी मुसलमान हो गईं। अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह तआला अन्हुमा एक मोअज़्ज़ज़ ख़ानदान के फ़र्द थे, जिनको विरासत में अक्लमंदी, बहादुरी, फसाहत और बलागत जैसी सिफ़ात मिली थीं। तारीख़ में अपना नाम और मकाम बनाने के लिए ये खूबियाँ काफ़ी थीं। अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह तआला अन्हुमा बचपन ही से बहुत ज़हीन थे। जो चीज़ एक दफ़ा सुन लेते, हमेशा के लिए जहन नशीन कर लेते। ये वो ज़माना था जब बहुत कम लोग पढ़ना लिखना जानते थे। आपके दादा आस के पास यहूदी और ईसाई बतौर मेहमान आते रहते थे। उमर बिन आस रदी अल्लाह तआला अन्हों ने इनसे कहा कि इसके बेटे अब्दुल्ला को पढ़ना लिखना सिखा दें, क्योंकि वो इसकी जहानत को जान चुके थे। बाप का ये इरादा पूरा हो गया। कम सिन अब्दुल्ला की तालीम का सिलसिला शुरू हो गया और कुछ ही अरसे में उन्होंने लिखना पढ़ना सीख लिया। उस वक्त पूरे मक्का में पढ़े लिखे लोगों की तादाद 7 से ज़्यादा नहीं थी। जो भी अरबी किताब इनके हाथ लगती, उसे फ़ौरन पढ़ डालते। इनमें इल्म की प्यास इतनी शदीद थी कि हर वक्त इल्म की लगन इनके दिल में जागती रहती। फिर इनके दिलो दिमाग में एक और ख्याल ने जगह बना ली कि जब तक वो किसी और ज़बान को नहीं सीखते, तब तक इनकी इल्मी प्यास नहीं बुझेगी। इनके इस ख्याल और शौक़ ने उनको सुरियानी ज़बान सीखने की तरफ माइल कर दिया। चुनाचा अपनी मेहनत से उन्होंने सुरियानी ज़बान सीखी ही नहीं, बल्कि वो इसके माहिर भी हो गए। एक दिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हु ने ख्वाब में देखा कि इनकी एक उंगली पे घी है और दूसरी पे शहद, और वो इन दोनों को चाट रहे हैं। सुबह हुई तो उन्होंने ये ख्वाब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी ताबीर ये की कि वो दो किताबों को पढ़ेंगे, यानी कुरान मजीद और तौरात को। इसी वजह से आपको कारुल किताबीन यानी दो किताबों को पढ़ने वाला कहा जाता है। यहाँ एक बात को जानना और समझना इंतहाई ज़रूरी है, वो ये कि किसी के लिए ये जायज़ नहीं कि वो कुरान मजीद नाजिल होने के बाद तौरात पढ़े या इसको ज़बानी याद करे। इसकी बुनियादी वजह यह है कि बेशक तो तौरात भी आसमानी किताब है, इसे भी कुरान की तरह हिदायत के लिए उतारा गया, लेकिन वक्त गुजरने के साथ लोगों ने इसके अहकामात को अपनी मर्जी और अपने फ़ायदे के लिए बदल डाला। अब इस किताब को पढ़कर हक़ और बातिल में फ़र्क मालूम करना बहुत मुश्किल हो चुका है, इसलिए इसके मुताले से गुरेज करना चाहिए। अलबत्ता इस एतबार से इसको देखना कि इसमें क्या कुछ है, ताकि पढ़कर यहूदियों का मुकाबला किया जा सके, उनकी तालीमात की रोशनी में उनका तोड़ किया जा सके। किसी हद तक इसको पढ़ने की गुंजाइश है, लेकिन ना पढ़ना ज़्यादा मुनासिब है। जाबिर बिन अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत है कि एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सैयदना उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ़ लाए, कहने लगे, हम यहूदियों की बातें सुनते हैं, हमें कुछ बातें अच्छी लगती हैं, अगर आप इजाज़त दें तो इनकी कुछ बातें लिख लिया करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, क्या तुम शक हो में हो या यहूदियों और ईसाइयों की तरह हैरान हो? मैं तुम्हारे पास साफ सुथरा दीन लेकर आया हूँ, अगर आज साहेब तौरात भी होते तो वो भी मेरी ही अतात करते, इनके पास इसके अलावा कोई चारा ना होता। अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह तआला अन्हुमा जब मुसलमान हुए तो उस वक्त कुरान पाक की कई आयात और सूरतें नाजिल हो चुकी थीं। अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम के पास जाकर कुरान सुनते, फिर उसको हिफ्ज़ कर लेते और बाद में लिख लेते। आपने जलील कदर सहाबी जैद बिन साबित रदी अल्लाह तआला अन्हु से बाकायदगी से कुरान की तालीम हासिल की। जो कुरान नाजिल होता उसको फ़ौरन लिख लेते। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल शुदा तमाम कुरान उन्होंने लिख लिया था। आपका कुरान के साथ बहुत गहरा दिली ताल्लुक़ था। आप बहुत ज़्यादा कुरान पढ़ते थे और कभी भी इससे उकताते नहीं थे। आप कुरान पाक को याद कर लेना ही काफ़ी नहीं समझते थे, बल्कि इसके साथ दिलों को आबाद करना ज़रूरी समझते थे, ताकि याद करने के बाद अल्लाह का फरमाबरदार बंदा बन सकें। इसमें बताए गए हलाल को हलाल जाना और हराम को हराम समझा जाए, कुरान की दावत पर हमेशा लब्बैक कहा जाए। इसीलिए जब आप तिलावत करते तो पूरे यकीन और ईमान की कैफियत के साथ हर कलमे पर ठहरते, उस पर गौर व फिक्र करते। दौरान तिलावत जब जन्नत का जिक्र आता तो आपकी कैफियत कुछ यूं हो जाती जैसे जन्नत को अपनी आंखों से देख रहे हों। जब दोजख का जिक्र आता तो इस तरह घबरा जाते जैसे दोजख के अजाब और वहाँ की चीख पुकार को सुन रहे हों। तिलावत के दौरान आपकी आंखों से आंसू जारी हो जाते। सच तो यह है कि कुरान के मुताले की लज्जत और सआदत वही इंसान हासिल कर सकता है जो दिलो दिमाग की पूरी गहराई, तवज्जो और दिलचस्पी के साथ इसको पढ़े। कुरान की क़िरात की लज्जत जिसने भी पाई, दुनिया की दूसरी तमाम लज्जतें उसके सामने हैज हो गईं। अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह तआला अन्हुमा सिर्फ कुरान ही से मोहब्बत नहीं रखते थे, बल्कि वो सुन्नत रसूल के भी शैदाई थे। जो बात भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से निकलती या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी काम करते, अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हु उसको बग़ौर सुनते, इसको जहन में नक्श कर लेते। उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त के साथ कई अहादीस मुबारक को लिखा। हालांकि सहाबा कराम इस बात को सख्त नापसंद करते थे कि कुरान की तरह किसी और चीज़ को भी लिखा जाए। खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को अहादीस लिखने से मना फरमाया, तुम मेरी बात ना लिखो, जो कोई तुम में से कुरान के अलावा कुछ लिख बैठा है उसको मिटा दो। इस हिदायत और तंबिया का मकसद गालिबन ये था कि कुरान इनके दिलो दिमाग में अच्छी तरह मजबूत और पायदार हो जाए, इन्हें कुरान मजीद की लिखाई के साथ अहादीस मुबारक का फ़र्क मालूम हो जाए, ताकि किसी किस्म का शक व शुबा बाकी ना रहे। इससे ये बात साबित करना भी मकसूद था कि कुरान जैसा कलाम और किताब इस दुनिया में और कोई नहीं। लेकिन ये सब शुरू शुरू की बातें थीं। जब सहाबा कराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन कुरान और इसकी तालीमात को अच्छी तरह पहचान गए, कुरानी आयात और अहदीस के आपस में मिल जाने का खदशा ख़त्म हो गया, तब अहदीस को कलम के साथ लिखने की इजाज़त दे दी गई। खुद अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हो फरमाते हैं, मैं हर वो बात लिख लिया करता था जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अतहर से निकलती थी और मेरे कानों में पड़ जाती थी। मुझे लिखते देखकर सहाबा कराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन ने मना कर दिया कि आप हर बात जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनते हो लिख लेते हो, हालांकि अल्लाह के रसूल एक इंसान है, कभी आप गुस्से की हालत में होते हैं, कभी नाराज़गी की हालत में। अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि मैंने सहाबा के कहने पर लिखना छोड़ दिया। फिर एक दिन मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस मसले के मुतालिक दरियाफ़ किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अब्दुल्ला, तुम लिखा करो, उस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, उस ज़बान से हक़ के अलावा कोई कलमा निकलता ही नहीं। लिखने की वजह ही से आपके को दूसरे सहाबा कराम से ज़्यादा अहादीस याद थीं, हत्ता कि अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु से भी ज़्यादा अहादीस आपको याद थीं। खुद अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मुझसे ज़्यादा किसी सहाबी को अहादीस मुबारक याद नहीं सिवाय अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह तआला अन्हुमा के, इसलिए कि वो लिखते थे, मैं नहीं लिखता था। अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हु तमाम अहादीस मुबारक को लिख लिया करते थे। ये अहादीस एक मजमूए की शक्ल अख्तियार कर गई थी और इनको लोग सहीफ़ाए सादका के नाम से पुकारते थे। ये सहीफ़ा अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हु को बड़ा महबूब था। इसमें किसी लफ्ज़ को ना तब्दील करते और ना ही अपनी तरफ से अल्फाज में कोई कमी बेशी करते। इमाम मुजाहिद रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, एक मरतबा मैं अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में हाजिर हुआ। मैंने उनकी चारपाई के नीचे से उस सहीफ़े को निकाल लिया। जब उन्होंने देखा तो मुझे रोक दिया कि इसे वापस रख दो। मैंने कहा, आप तो मुझे किसी चीज़ से नहीं रोकते थे, आज क्यों इस सहीफ़े से रोक रहे हैं? उन्होंने जवाब दिया, ये एक सच्चाई है, इसमें वो बातें हैं जो मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी हैं। मेरे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान कोई वास्ता नहीं। जब मेरे पास ये दो चीज़ें महफूज होंगी, यानी ये सहीफ़ा और अल्लाह की किताब, तो मुझे इसके मुकाबले में अपनी ज़रख़ेज़ ज़मीन की भी कोई परवाह नहीं, क्योंकि ये दुनिया है, एक दिन ख़त्म हो जाएगी। सहीफ़ा सादका से चंद अहादीस मुबारक पेशे ख़िदमत हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद में खरीदो फरोख से मना फरमाया है। असर की नमाज के बाद गुरूब आफ्ताब तक कोई नफली नमाज नहीं होती। खाओ पियो, सदका खैरात करो, जो चाहो कपड़े पहनो, शर्त यह है कि इसमें फजूल खर्ची और तकबर ना हो। वह हम में से नहीं जो छोटों पर रहम नहीं करता, बड़ों का अदब नहीं करता। क्या मैं तुम्हें ना बताऊं कि तुम में से मुझे सबसे ज़्यादा महबूब कौन है और क़यामत के रोज़ मेरे सबसे ज़्यादा करीब कौन होगा जिसका तुम में से इखलाक अच्छा होगा? जब तुम्हारे बच्चों की उम्र 7 बरस हो जाए तो इनको नमाज़ पढ़ने का हुक्म दो। अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हो बहुत मुत्तकी और परहेजगार थे। हमेशा इबादत में मसरूफ़ रहते, दिन में रोज़ा रखते और रातों को अल्लाह के हुजूर झुक कर इज्ज़ इनकसार के साथ नवाफिल अदा करते। जब भी ज़रा फारिग वक्त मिलता, कुरान की तिलावत में मसरूफ़ हो जाते। अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हु को कुरान से खसूसी लगाव था। वह कुरान की तिलावत को आँखों की ठंडक समझते थे, इसीलिए अपनी शबो रोज़ इसी में गुजारते। एक मरतबा उस वक्त तक जितना कुरान नाजिल हुआ था सारा एक ही रात में पढ़ लिया। जब उस बात की इत्तला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हुक्म दिया कि 3 दिन से पहले मुकम्मल ना किया करो। इस वाक़े के बाद बारे में अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह तआला अन्हुमा खुद कहते हैं कि मैंने कुरान मजीद को जमा किया, फिर उसको एक ही रात में पढ़ लिया। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक माह में मुकम्मल किया करो। मैंने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे अल्लाह ने ताकत दी है, नौजवान हूँ, ज़्यादा पढ़ने की इजाज़त दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 10 दिनों में मुकम्मल कर लिया करो। मैंने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इससे भी ज़्यादा पढ़ना चाहता हूँ, इजाज़त दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 7 रातों में मुकम्मल कर सकते हो। मैंने फिर अर्ज़ की, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इससे भी ज़्यादा पढ़ने का शौक़ है, मज़ीद इजाज़त अता फरमाएं। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकार कर दिया। सिर्फ इनकार ही नहीं किया बल्कि साथ ही फरमाया, जिस आदमी ने 3 रातों से पहले कुरान की तिलावत मुकम्मल की, गोया के उसने कुरान समझा ही नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस फरमान में हमारे लिए बड़ा वाज़े सबक है। इस्लाम दीन फितरत है, वो आसानियाँ पसंद करता है, मुश्किलात पैदा नहीं करता। दीन ने हमें जो आसानियाँ और सहूलत दे रखी हैं उससे फ़ायदा उठाना चाहिए, बिला वजह अपने आप को तंगी में नहीं डालना चाहिए। इस्लाम ने हमें शब व रोज़ के अक्सर अवकात में इबादत के उम्दा तरीक़े सिखाए, अगर हम सादगी के साथ उन पर अमल पैरा हों तो यकीनन अल्लाह ताला की रज़ा मंदी हासिल होगी। इस बात में कोई शक नहीं कि उम्दा इबादत, कसरत से अल्लाह का जिक्र, कुरान करीम की तिलावत और रोज़ा एक मोमिन इंसान के दिल पर बहुत ज़्यादा असर करता है। इन इबादत के करने से दिल बहुत ही ज़्यादा नरम हो जाता है, अल्लाह ताला से बहुत ज़्यादा डरने वाला हो जाता है। और जब किसी का दिल नरम पड़ जाए तो फिर वो आंसुओं से रोता है। अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा भी ऐसे लोगों में से एक थे जो अल्लाह के डर की वजह से कसरत से रोते रहते थे। या अली बिन अता रहमतुल्लाह अलैहि अपनी वालदा से रिवायत करते हैं कि वो अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा के लिए सुरमा तैयार करती थीं ताकि वो अपनी आँखों में डालें, इसलिए कि वो अल्लाह के डर की वजह से कसरत से रोते रहते हैं थे। अपने दरवाज़े को बंद कर लेते और देर तक रोते रहते। रोने की वजह से इनकी बिनाई तकरीबन ख़त्म हो गई थी। क्या ये वही इंसान नहीं जो कह रहा है, अल्लाह की राह में एक आंसू बहाना मुझे अल्लाह की राह में 1,000 दिनार खर्च करने से ज़्यादा महबूब है। एक दफ़ा इबादत के हवाले से एक बड़ा अजीब किस्सा हुआ। अनस बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु इस वाक़े के बारे में बताते हैं। एक मर्तबा हम अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अभी तुम्हारे पास एक जन्नती इंसान आने वाला है। हमने देखा तो आने वाला एक अंसारी था। अहले मदीना को अंसारी कहते हैं, जिन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीने में खुशामदीद कहा और इनकी रिसालत को तस्लीम किया। उस अंसारी की दाढ़ी से वज़ू के पानी के कतरे गिर रहे थे। बाएं हाथ में उसने अपने जूते उठाए हुए थे। दूसरे रोज़ हम उसी तरह बैठे थे कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अभी तुम्हारे पास एक जन्नती इंसान आने वाला है। हमने देखा कि आने वाला तो वही आदमी है जो कल आया था। तीसरे रोज़ फिर इसी तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक जन्नती अभी आने वाला है। देखा तो फिर वही अंसारी जाहिर हुआ। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस से रुखसत हुए तो अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हु उस अंसारी के पीछे चल पड़े जिसको 3 दफ़ा जन्नत की बशारत मिल चुकी थी। उस अंसारी से उन्होंने कहा, मेरा अपने वालिद साहब से झगड़ा हो गया है, मैंने कसम खाई है कि 3 रोज़ तक घर में दाखिल नहीं होंगा, क्या मैं 3 रोज़ के लिए आपके यहाँ क़याम कर सकता हूँ? उस अंसारी ने जवाब दिया, कोई बात नहीं, आप मेरे यहाँ ठहर जाएँ। अनस रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह तआला अन्हुमा ने हमें बताया, मैंने 3 रातें उस अंसारी के घर में क़याम किया लेकिन उसमें क़यामुल लैल वाली कोई झलक ना देखी, यानी रातों को उठकर अल्लाह की इबादत करते कतई ना देखा, सिवाय इसके कि जब वो अपने पहलू को बदलता तो अल्लाह का जिक्र करता, अजान के वक्त नमाज के लिए उठ खड़ा होता ताकि नमाज फजर अदा करे। मैंने भलाई के उस कलमे के अलावा उसकी ज़बान से कोई लफ्ज़ नहीं सुना। जब 3 रातें गुजर गईं, मुमकिन था मैं इसकी इबादत को हकीर जानता। मैंने उसे असली सूरत हाल से आगाह करते हुए कहा, ए अल्लाह के बंदे, मेरा वालिद साहब से कोई झगड़ा नहीं हुआ, ना ही उन्होंने मुझे घर से निकाला है। मैंने ये काम इसलिए किया था कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में सुना कि अनकरीब तुम्हारे पास एक जन्नती आदमी आने वाला है। मैंने 3 मर्तबा देखा तो वो खुशकिस्मत आप ही थे। मैंने सोचा कि देखूं आप क्या अमल करते हैं जिसकी वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको जन्नत की बशारत दी है, ताकि मैं भी आप जैसा अमल करूँ और जन्नत का हकदार बन जाऊँ। लेकिन मैंने तो आप में कोई बड़ा अमल नहीं देखा। आखिर किस वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको 3 मर्तबा जन्नत की बशारत दी, मुझे इसके बारे में ज़रूर बताएं। उस अंसारी ने कहा, आपने जो कुछ देखा बस यही अमल था, मैं तो इतना ही अमल करता हूँ। अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, जब मैं वापस आने लगा तो उन्होंने मुझसे कहा, ठहरो, मैं जो अमल करता हूँ आपने देख लिया, लेकिन इसके अलावा एक बात और है। मैं अपने दिल में किसी मुसलमान के बारे में कीना बगज़ नहीं रखता, और जो कुछ अल्लाह ने किसी को दे रखा है इस पर हसद नहीं करता। अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह तआला अन्हुमा ने फरमाया, यही वो काम है जिसकी वजह से आपको जन्नत की बशारत मिली है। अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी का मकसद ही आखरत की कामयाबी था। उनके दिल में अल्लाह ताला का ये इरशाद समा गया था कि दुनिया का सामान तो आरजी है और आखरत तो सिर्फ परहेजगार के लिए है। तुम पर कल क़यामत के दिन एक धागे के बराबर भी जुल्म नहीं किया जाएगा। इनके अंदर बे इंतहा आजी और इनकसारी थी। आजी और इनकसारी की पहली अलामत यह है कि आप लोगों की इज्जत व वक़ार को पहचाने। हसन बिन शफी रहमतुल्लाह अलैहि कहते हैं कि एक मरतबा हम अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह तआला अन्हुमा के पास बैठे हुए थे कि आपका एक शागिर्द हाजिर खिदमत हुआ। अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, तुम्हारे पास वो आदमी आया है जो ज़्यादा जानता है। जब वो बैठ गया तो अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हु ने इससे कहा, हमें तीन अच्छी और तीन बुरी चीज़ें बताओ। उसने अदब के साथ कहा, ज़रूर बताऊँगा, भलाई की तीन चीज़ें ये हैं। नंबर एक सच्ची जबान, नंबर दो परहेजगार दिल, नंबर तीन नेक औरत। तीन बुरी चीज़ें ये हैं, नंबर एक झूठ बोलने वाली जबान, नंबर दो गुनाहगार दिल, नंबर तीन बुरी औरत। ये सुनकर अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हो हाजरीन से कहने लगे, मैंने तुम्हें कहा था ना, अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हो बहुत बहादुर शहसवार और दिलेर जंगजू थे। जंग के मैदान में बेमिसाल शुजात का मुजाहरा करते थे। उनकी इबादत के मामूलात उनको जिहाद से नहीं रोकते थे। अल्लाह की राह में जान और माल के साथ जिहाद के लिए निकलते। उनके मुतालिक मशहूर है कि वो दो तलवारों के साथ एक ही वक्त में लड़ाई लड़ते थे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आप कई जंगों में शरीक हुए। फतह मक्का, जिसे अल्लाह ताला ने इस्लाम की वाज़ फतह करार दिया, उसमें आप रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। ग़ज़वा हुनैन में भी आपने कामयाबी की मिठास चखी। ग़ज़वा तबुक में भी आपने शिरकत की। जैश रिदत में आपने अपने वालिद उमर बिन आस रदी अल्लाह तआला अन्हो के हमरा इस्लामी लश्कर की जानिब से शिरकत की। जैश रिदत से मुराद वो लोग हैं जो सैयदना अबू बकर रदी अल्लाह तआला अन्हो के ज़माने में मुर्तद हो गए थे, यानी इस्लाम से फिर गए थे। ये वो मुसलमानों के लिए बहुत आजमाइश का दौर था, लेकिन मुसलमानों ने उन मुर्तदीन के ख़िलाफ़ बहुत बहादुरी और जुर्रत के साथ जंगें कीं। अल्लाह ताला ने उनको फतह नसीब फरमाई। इस्लाम फिर से उसी तरह ताकतवर हो गया जिस तरह रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ताकतवर और कवी था। अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु ने 70 साल उम्र पाई। दुनिया ने उनको कभी कोई धोखा दिया और ना ही उन अपनी जेब व जीनत की वजह से अपनी तरफ मुतवज्जा कर पाई। पूरी ज़िंदगी अल्लाह की रज़ा का ख्याल रखा। रुको, सुजूद, जिक्र इलाही और कुरान की तिलावत हमेशा उनकी ज़िंदगी का हिस्सा रही। अपनी ज़बान की हमेशा हिफाजत की। किताबों की सूरत में उन्होंने हमारे लिए बहुत इल्म छोड़ा, ऐसा इल्म जो उनके लिए सदका जारिया बना। जब भी कोई सीखने वाला इस इल्म को सीखेगा या कोई पढ़ने वाला पढ़ेगा तो इनको मुसलसल सवाब मिलता रहेगा। अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह तआला अन्हुमा के चंद अकवाल इस दुआ के साथ पेश खिदमत हैं कि अल्लाह उनसे हमारे लिए हिदायत और रहनुमाई के दरवाजे खोल दे। एक मरतबा सुबह की नमाज के बाद वो एक सोए हुए आदमी के पास से गुजरे। इसको अपने पाँव की मदद से हिलाया और उठाकर कहा, क्या तुझे मालूम नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला इस घड़ी में अपनी मखलूक को देखते हैं, फिर उनमें से एक जमात को अपनी रहमत के साथ जन्नत में भेज देते हैं। अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हु के अकवाल में से एक कौल ये भी है कि तौरात में लिखा हुआ है कि जो किसी के लिए घड़ा खोदता है वो खुद उसमें गिर पड़ता है। इसी तरह इनका ये कौल भी है कि भलाई के मुतालिक जो मैं आज करता हूँ ये हमें उस अमल से ज़्यादा महबूब है जो हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिलकर करते थे, अगरचे वो उससे दो गुना भी क्यों ना हो। क्योंकि उस वक्त हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ होते थे और हमें सिर्फ आखरत की फ़िक्र होती, हमें दुनिया की कोई परवाह नहीं थी। आज हम दुनिया की तरफ झुक चुके हैं, आखरत को भूल गए हैं। आप फरमाया करते थे, इस चीज़ को छोड़ दो जिसका आपसे कोई वास्ता ही नहीं, ऐसी बात ना करें जो आपको फ़ायदा ना दे सके। आपने फरमाया, अल्लाह के खौफ की वजह से एक आंसू बहाना मेरे नज़दीक 1,000 दिनार खर्च करने से ज़्यादा महबूब है। रास्ते हमेशा दो ही होते हैं, एक सही और एक गलत। वो लोग किस्मत के बड़े धनी होते हैं जिनको सही रास्ते सिराते मुस्तकीम की पहचान हो जाए, ख़ास तौर पर शऊर पाने की उम्र में। ईमान की हरारत जब दिल में जगह पा लेती है तो दीन और दुनिया दोनों की भलाई के रास्ते खुल जाते हैं। इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। शऊर पाने की उम्र में हक़ की हलावत चखी तो इल्म की प्यास ने उन्हें बेकरार कर दिया। अरबी के साथ साथ ज़बान गैर को सीखा और कुरान और तौरात के मुताले से क़ारियुल कातिबीन कहलाए। तक्वा, परहेजगारी, कुरान से मोहब्बत और जिहाद से शगफ उनकी पहचान थे। हदीस को सबसे पहले उन्होंने लिखने की रिवायत डाली, इसी बिना पर उन्हें सबसे ज़्यादा अहादीस याद रखने का शर्फ भी हासिल था। यहाँ पार्ट नंबर 7 मुकम्मल हुआ। आगे की तफसील अगले पार्ट में जानिए। जजाकअल्लाह।